बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने जो पोस्टर पढ़ा है आज के प्रोग्राम का, उसमें दो टॉपिक लिखे गए हैं, एक हलाले का और दूसरा एक से ज़्यादा शादी का। ये टॉपिक ऐसा है कि सुनने में भी बड़ा मज़ा है, अगरचे करना बड़ा मुश्किल है। और इस वक्त के ऊपर हमारी हुकूमत ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट की है, उसमें उन्होंने इसको भी उठाया है, बहुपत्नीत्व, एक से ज़्यादा शादी के मसले को। इस मसले में एक बात मैं आपको पाए की कहूँ, हम सरकार को भी ये बात कहना चाहते हैं कि करोड़ रुपए का सवाल सबसे पहला ये है कि एक से ज़्यादा शादी करना इस्लाम मज़हब के अंदर फरजियात हो, कंपलसरी हो, ज़रूरी हो, ऐसी कुरान की एक आयत या एक हदीस बतलाओ। ये बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए उनसे, एक आयत कोई हमको ऐसी बतला दे, एक हदीस ऐसी बतला दे, शरीयत का एक हुक्म ऐसा बतला दे कि एक से ज़्यादा शादी करना फरजियात हो, वाजिब हो, ज़रूरी हो। जब हमारी शरीयत में एक से ज़्यादा शादी करना फरजियात नहीं है, ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है, तो उसका मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक सही है, कहाँ का ये इंसाफ है। अब बात समझिए कुरान की आयत को, अल्लाह फरमाते फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मतना व सुलासा व रुबा। शरीयत ने एक से ज़्यादा शादी करने को जायज़ कहा कि ये जायज़ है। अब मैं आपको सवाल करूँ, कितनी सारी चीज़ें जायज़ है आज तक हमने कभी की भी नहीं, देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, कितनी सारी चीज़ें जायज़ हैं। क्या दुनिया में जितनी जायज़ चीज़ें हैं वो सब, शरीयत में जितनी जायज़ चीज़ें वो सब कर डाली मुसलमानों ने? तो जो चीज़ शरीयत ने सिर्फ जायज़ बतलाई, उसकी वजह से मुसलमानों को और इस्लाम को और मज़हब को और शरीयत को टॉन्टिंग करना, उसके ऊपर जो है फितना खड़ा करना, ये कहाँ तक की सही और अकलमंदी की बात है। दूसरी बात, हमारे मज़हब के अंदर जो एक से ज़्यादा शादी करनी है ना, इजाज़त जो दी, उसके लिए इतनी ख़तरनाक शर्त है, इतनी ख़तरनाक शर्तें और कंडीशन है कि अगर वो कंडीशन अगर आप लोग सुनो और समझो तो कभी कोई आदमी दूसरी शादी करने की हिम्मत ही ना करे। ये मेरे सामने कटिंग है, अशरफुस्सवान है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ने एक ज़रूरत से दूसरी शादी की तो हज़रत की बीवी कहने लगी, कुछ और लोगों ने भी कहा कि हज़रत आपने दूसरी शादी की तो अब आपके तमाम मुरीद लोग भी दूसरी शादियां करना चालू कर देंगे, क्योंकि पीर साहब जो करे वो काम मुरीद साहब को भी करने का। तो कहा हज़रत आपने दूसरा निकाह किया तो आपने तो दूसरी शादी का दरवाज़ा खोल दिया। तो हज़रत ने क्या जवाब दिया, अजीब व गरीब जवाब दिया, इरशाद फरमाया, मेरे प्यारों, मैंने दूसरी शादी करके दूसरी शादी का दरवाज़ा खोला नहीं है, बल्कि दूसरी शादी का दरवाज़ा बंद कर दिया है। لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ کہا جب اشرف علی کو دیکھیں گے پریکٹیکل لائف میں کہ دو بیوی کے حق کتنے بھاری ہوتے ہیں، دو بیویوں کو نبھانا کتنا بھاری ہوتا ہے اور انصاف کتنا ضروری ہے، تو کہا کبھی کوئی ہمت نہیں کرے گا دوسری شادی کرنے کی. اب حضرت نے جو شادی کی اس پر میں آپ کو ایک عجیب قصہ سنا. حضرت کی مجلس چل رہی تھی، ایک گاؤڑے کا رہنے والا آدمی آیا ہے، دو تربوز لے کے آیا ہے اور آ کر کے حضرت کو کہتا ہے حضرت یہ تربوز دو لایا ہوں آپ کے لیے. حضرت نے کہا دو کیسے؟ تو کہنے لگا وہ گاؤڑی آدمی اپنی گاؤں کی زبان میں، مولے اشرف علی تیری دو بیوی ہے نا، اس لیے دو تربوز لایا ہوں، یہ دونوں بیوی کو ایک ایک دے دینا. حضرت نے فرمایا یہ دونوں تربوز ایک جیسے ہیں، برابر برابر ہیں، تجھے کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا کہ مولے اشرف علی میں جانتا ہوں کہ تو انصاف بہت کرتا ہے، اسی لیے میں دونوں تربوز وزن کر کے لایا ہوں بہت محنت سے، دونوں تربوز کا وزن بالکل برابر برابر ہے، ایک گرام کا بھی فرق نہیں. اچھا، حضرت نے فرمایا کہ وزن برابر ہے، آگے کا سوال کہ دونوں تربوز کی مٹھاس بھی برابر ہے، وہ تجھے کیسے پتا چلے گا؟ حضرت نے حکم دیا، دونوں تربوز کو بیچ میں سے کٹوایا اور دونوں تربوز میں سے ایک ایک ٹکڑا دونوں بیویوں کے گھر کے اندر بھیجا. جب یہ منظر اس گاؤں کے رہنے والے آدمی نے دیکھا تو اس نے یہ کہا مولے اشرف علی تو تو دو شادی کر کے بڑی تکلیف میں لگتا ہے کہ ہر چیز میں دو دو اور وہ بھی برابر برابر کرنا، یہ تو بہت بڑی تکلیف. تو حضرت نے اس کے اوپر جواب میں ارشاد فرمایا بھائی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف میں برداشت کر لوں دونوں بیویوں میں انصاف کرنے کی، یہ بہت اچھی بات ہے آخرت میں ناانصافی کی سزا بھگتنے کے مقابلے میں، کہ اگر ناانصافی کروں گا تو اللہ کی یہاں سزا ہوگی اور وہ سزا بڑی خطرناک ہوگی، اس لیے میں دنیا میں تھوڑی سی تکلیف بھگت لوں یہ بہت اچھی بات ہوگی. کیا تکلیف، کیا آخرت کی سزا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة. ایک آدمی نے دوسری شادی کی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کل جدید لذیذ، جو نئی چیز آتی ہے نا وہ بہت ٹیسٹی ہوا کرتی ہے. تو اب نئی نئی بیوی آئی تو وہ پرانی تو بیچاری ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی، اس کو تو ایسا سمجھا کہ اب تو یہ تو ریٹائر سائٹ پر ڈال دی. اللہ فرماتے ہیں حدیث میں حکم ہے کہ ایک بیوی کے ہو جاؤ اور دوسری بیوی پر دھیان نہ دو اور پرانی بیوی کو ادھر لٹکی ہوئی چھوڑ دو تو قیامت کے دن یہ شوہر ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی باڈی کی پوری ایک سائٹ پر لکھوا لگا ہوا ہوگا، ایسی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں آئے گا. اور ناانصافی کی سزا اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے گی. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنیے، عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں بیویوں کی باری. دیکھو ہماری یہاں جو شادی کی اجازت ہے نا دوسری، ضرورت کے وقت پر، کوئی ضرورت پیش آ گئی، ایسی ضرورت اور مجبوری میں دوسرے نکاح کی اسلام نے اجازت دی. اور اس کے لیے کنڈیشن یہ رکھی دونوں بیویوں پر برابر انصاف کرنا، کپڑے بھی برابر، مکان بھی برابر، کھانا بھی برابر، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی چیز آوے تو وہ بھی دونوں کو دینے کے اندر برابر ہی برابر. حضرت کے یہاں ہدیے آتے تھے، اللہ مولویوں کو ہدیے کی طاقت پر چلاتے ہیں، سنت ہے نبی کی ہدیہ قبول کرنا. तो लिखा है इसी अशरफ उस सवाने में, तीन हिस्से करते हजरत, जो भी हदिया आता तीन हिस्से, एक हिस्सा अपने लिए रखते और दो हिस्से दोनों बीवियों के घर के अंदर भेज देते थे। दो मकान बनवाए, दोनों मकान दोनों बीवियों को मालिक बना के दे दिया, दोनों बीवी को मालिक बना के दे दिया। है आज कोई, है दुनिया का कोई कानून जो यूं कह दे कि बीवी को अपना मकान हदिये में गिफ्ट में दे दे? अरे कोई जनस देने तैयार नहीं होता। जनस में ये कहते हैं कि खाली तुझे इस्तेमाल करने का, मालिकी तो ससुराल वालों की। वो बिचारी बीवी पूरी जिंदगी खिदमत करे, जनस के दो तोले सोने देना तैयार नहीं। और ये हमारे इस्लाम की मुकद्दस तालीम, अपनी बीवी को मकान हदिये में दोगे अल्लाह तुमको सवाब दे। हजरत ने दो मकान बनाए, दोनों बीवी को एक एक मकान हदिये में दिया और एक तराजू लटका दी हजरत ने शादी के बाद। उसका नाम ही रखा मीजान अदल, मीजान अदल इंसाफ की तराजू। कोई भी चीज आती उसमें रख के तोल के आधा आधा करके दोनों घर में भेज देते। कपड़े भी किसी बीवी के घर में नहीं रखते, खानका में रखते। इसीलिए कि एक बीवी के घर में कपड़े रखेंगे तो उस दूसरी को होगा, मेरे घर में हजरत कपड़े नहीं रखते, लगता ऐसा है कि उधर ध्यान ज्यादा है। इसीलिए कपड़े भी हजरत किसी के घर में नहीं, दोनों के घर को छोड़ करके कपड़े भी रखते थे हजरत खानकाह के अंदर। और अजीब बात, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ये इस्लाम की तालीम। इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन जिस औरत की बारी होती है उस दिन दूसरी बीवी का ख्याल करना, वो भी मैं इंसाफ के खिलाफ समझता हूं। कि जिस दिन जिस औरत की बारी होगी मैं उसके घर सोने जाऊंगा और मेरे विचार में भी मेरे ख्याल में भी दूसरी बीवी को नहीं लाऊंगा, इसलिए कि जिस बीवी की बारी है उसके अलावा दूसरी बीवी का ख्याल करना इसको भी मैं इंसाफ के खिलाफ समझता हूं। कितनी जबरदस्त बात है, ये हमारा इस्लाम कहता है। फिर तुम इसके ऊपर इल्जाम लगाओ कि इस्लाम के अंदर जो है लोगों को ये एक से ज्यादा बीवियां करने की इजाजत दे दी और जो है मर्दों को जो है आवारा और आजाद बना दिया। हजरात आप जानते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू, ये भी तो है आगे कुरान के अंदर। याद रखो, एक सवाल है नफ्सियात का, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, उसमें रिसर्च लिखा है यूरोप के डॉक्टरों का, मैं उनकी बात नकल करता हूं कि मर्द और औरत में दोनों में अल्लाह ने कुदरती तौर पर ताकत मर्द में ज्यादा रखी है। अब मर्द में ताकत ज्यादा, औरत में ताकत कम, तो वो मर्द अपनी ताकत को सिर्फ एक औरत के जरिए से कैसे पूरी करे? ये भी एक जरूरत है दूसरे निकाह की। और ऐसा होता है औरत बीमार हो गई, बच्चा हुआ, इन दिनों के अंदर मर्द क्या करे? और सुन लो, जब औरत बीमार होती है बच्चा घर में होता है ऐसे ही दिनों में शोहर के तकवा का इम्तिहान होता है कि कितना तकवा वाला है। इसलिए कि उन दिनों में औरत के साथ सो नहीं सकता, अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अब ऐसे हालात में एक आदमी गुनाह करे, जिना करे, उसको तुम चला लो और दूसरे निकाह की इजाजत ना दो और उसको कहो कि इस्लाम के अंदर बहुपत्नीत्व औरतों पर जुल्म है, ये कहां के इंसाफ की बात है? और आज आप देखेंगे कि हमारे मजहब ने हमको खास तौर पर हुक्म दिया खाना कपड़ा मकान रात सोने के अंदर भी बराबरी बराबरी करनी। याद रखना, ऐसा कोई मसला शरीयत में नहीं है कि नई बीवी आई तो उसके साथ सोने जाओ और पुरानी बीवी के यहां सोने नहीं जाओ, ये भी जुल्म है। अगर नई बीवी आई तो उसके यहाँ एक रात सो तो पुरानी बीवी के यहाँ एक रात सो, नई बीवी के यहाँ एक हफ्ता सो पुरानी बीवी के यहाँ एक हफ्ता सो, नई बीवी के यहाँ एक महीना सो पुरानी बीवी के यहाँ एक महीना सो, इंसाफ करना है। उसमें कोई जुल्म और ज्यादती की शरीयत ने इजाजत नहीं दी। और आगे इरशाद फरमाया फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलो फवाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, अगर तुमको यकीन है इंसाफ नहीं कर सकोगे, इंसाफ नहीं कर सकोगे इसका यकीन है तो फिर सिर्फ एक बीवी के जरिए से चला लो। और आगे जो बात कही उसकी तो इस जमाने में कोई गुंजाइश है ही नहीं, इसीलिए इसी पर करना पड़ेगा कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते दो तीन चार बीवियों के दरमियान तो फिर सिर्फ एक बीवी के जरिए से अपनी जिंदगी गुजार लो। याद रखो दो तीन चार बीवी कर लेना तो आसान है लेकिन इनको निभाना, उनके हुकूक को अदा करना ये बहुत मुश्किल चीज है। और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले सर्वे करवाते हैं, यूनाइटेड नेशन वाले सर्वे करवाते हैं, सर्वे रिपोर्ट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूनाइटेड नेशन की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, हरेक की रिपोर्ट आज ये कह रही है कि दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा हो रही है मर्द की तादाद कम हो रही है। तो बताओ अगर ये औरतों की तादाद ज्यादा है और तुम ये कहो कि मर्द एक ही शादी करे तो बेचारी इन औरतों का होगा क्या? क्या उनको तुम जिना का दरवाजा खुलवाना चाहते हो? कानून की पाबंदी लगवा करके गलत चीज का दरवाजा खुलवाना चाहते हो? गलत चीज वजूद में आएगी तो हरामी औलाद वजूद के अंदर आएगी। और मैं आपसे बात कहूं एक बात कि हमारी हुकूमत ने एफिडेविट की 38 पेज की एफिडेविट है, मेरे पास है उसकी कॉपी, हम कोई बात ऐसे नहीं करते। और ऐसी उसके अंदर कायदे की भूल भुलैया लिखी है, मैंने बड़े बड़े हाईकोर्ट के बैरिस्टरों को दिया कि मुझे समझाओ उसकी सब दफात क्या क्या लिखा है। तो कहीं उसके अंदर एक बात भी ये नज़र नहीं आई कि कोई ऐसी बात उन्होंने एफिडेविट में लिखी हो कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान है, हिंदू है, बुद्ध है, ईसाई है, कितने सारे मजहब के मानने वाले हैं, कौन से मजहब वालों ने कितनी शादियां की, एक से ज्यादा कितने मर्द है ऐसे जिन्होंने एक से ज्यादा शादी की, ऐसी तो कोई बात एफिडेविट में है ही नहीं। काश कि हुकूमत कोई एकदम इंसाफ से सर्वे करा करके उसके आंकड़े बाहर पाड़ती और लोगों के सामने डिक्लेयर करते कि एक से ज्यादा बीवी करने वाले कितने मुसलमान हैं और कितने दूसरे मजहब के मानने वाले हैं। 1985 के अंदर जो सर्वे हुआ था हमारे मुल्क के अंदर, वो सर्वे रिपोर्ट के सरकारी आंकड़े के मुताबिक एक से ज्यादा शादी करने वाले सबसे कम मुसलमान, सबसे कम मुसलमान, हमारे पास प्रूफ मौजूद है। 1985 की सर्वे रिपोर्ट, सबसे ज्यादा कम एक से ज्यादा शादी करने वाले मुसलमान और दूसरे मजहब वाले हमसे बहुत आगे। फिर अकेले मुसलमान पर यह इल्जाम लगाना कि एक से ज्यादा बीवियां करते फिरते हैं, बात दरअसल ये कि उनके मुंह में पानी आ रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मुसलमान अकेले अपने मजहब से फायदा उठाए, क्योंकि दूसरे लॉ के अंदर कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं, पाबंदी है इस वजह से। और देखिए अल्लाह सुबहानहु व ताला ने ये जो एक सिलसिला रखा तो ये सिलसिला एक ऐसी चीज है कि इंसान कभी हालात में, मजबूरी में, बीमारियों में फंस करके ऐसे तंग हालात पर आ जाता है घरेलू एतबार से कि उसको मजबूरी के अंदर दूसरा निकाह करना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि पहली बीवी बिचारी काम करने के, खिदमत करने के काबिल नहीं, अब घरेलू कामकाज का मसला आ गया, ये भी एक बड़ी हिकमत है। तो हम लोग हमारी शरीयत के इस कानून पर पूरे पूरा इत्मीनान और यकीन रखते हैं कि शरीयत में जो एक से ज्यादा शादी करने को जायज रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो कानून बिल्कुल सही है, उसमें कोई जुल्म नहीं। इसलिए कि इसकी कंडीशन और शर्त इतनी सख्त रखी गई है कि कोई भी आदमी जो है आसानी के साथ उसकी हिम्मत नहीं कर सकता। उसके लिए मनी पावर चाहिए, मसल्स पावर चाहिए, तब जाकर के आदमी जो है इसकी तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं अपने मुसलमान भाइयों से बहुत दर्द दिल से अपील करूंगा, अगर जरूरत है, जरूरत है तो दूसरी शादी करो, निकाह करो जरूरत हो, लेकिन अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जीना का दरवाजा मत खोलो। और साथ में दूसरी शादी करने वालों से अपील करूंगा, अल्लाह के वास्ते दोनों बीवियों में इंसाफ करो, उनके हुकूक को अदा करो। अगर तुम हक अदा नहीं करोगे तो तुम्हारे जुल्म की वजह से इस्लाम बदनाम होगा, इस्लाम को बदनाम करने का जरिया तुम बनोगे। और जो आदमी इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बनेगा, वो आदमी कभी भी दुनिया आखिरत में सुख चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता, कभी सुख चैन से नहीं रह सकता। आज बहुत से मुसलमान ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से ये सवाल उठता है। बहरहाल हमारी शरीयत ने एक से ज्यादा शादी करने को जायज रखा, कोई फरजियात कानून नहीं है और उसके लिए भी बहुत सख्त कानून और शर्तें हैं। ये कोई खाने के खेल नहीं है और ये चीज इस्लाम में कोई बुराई नहीं। आज दुनिया में क्या हो रहा है, अगर हम कहें तो पता नहीं किसको किसको बुरा लग जाए, ऊपर से नीचे तक दावा करेंगे कि एक ही बीवी है। और अगर देखने जावे तो एक्स्ट्रा साइट के अंदर वो तो कपड़े की तरह बदलते रहते हैं और उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। और मुसलमान अगर जरूरत के वक्त कानूनन दूसरी शादी करे तो उसके ऊपर फितना होता है। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए और इस्लाम के इस कानून के ऊपर हमको सही यकीन अता फरमाए। मैं आप सब हजरात से एक सवाल जरूर करूंगा, पूरा मजमा पूरे ईमान के साथ जवाब दे, बतलाओ हमारी शरीयत के अंदर कोई भी ऐसा कानून है कि जिसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है? बताओ, अरे बताओ, जरूरत है? हरगिज नहीं। हमारी शरीयत में एक कानून भी ऐसा, बतलाओ, है कि जिसमें कोई चेंजिंग की, तब्दीली की जरूरत हो? अरे बोलो जोर से, हाथ ऊंचा करो, है कोई जरूरत? हरगिज नहीं। ये मुकम्मल शरीयत है, कयामत तक मुकम्मल है, कोई उसमें तब्दीली और फेरफार करने की कोई जरूरत नहीं। और याद रखो, हमारा ईमान है और अल्लाह पर भरोसा है और दुआ है मालिक से कि इंशाल्लाह कोई शरीयत के कानून को बदल भी नहीं सकता। कहो इंशाल्लाह, कोई हमारी शरीयत के कानून को नहीं बदल सकता। अब एक और मौजू मुझे दिया गया है, निकाह के बाद अगर कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक का नफका जो है खर्चा सिर्फ इद्दत के दिन के अंदर देना होता, इद्दत के बाद खर्चा देने का बीवी को नहीं। अब ये भी एक बड़ा डेंजर मसला है। 1985-86 के अंदर हमारे देश में इस पर जबरदस्त आवाज उठी। एक बुढ़ी औरत जिसका एक बाल भी सफेद, एक बाल भी काला नहीं, वो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अल्लाह जाने वो शाह बानू कहां से आ गई, बुढ़िया एकदम। और वो गई क्यों? कि शादी के बाद तलाक हुई और तलाक के बाद इद्दत पूरी हो गई, फिर भी मुझे खर्चा अपने शौहर के पास चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में मुसलमानों ने उस वक्त के ऊपर आवाज उठाई तो मुल्क की पार्लियामेंट को कानून पास करना पड़ा और ये तय करना पड़ा कि मुस्लिम औरतों को صرف عدت تک نفقہ اور خرچہ ملے گا، اس کے بعد نہیں ملے گا، یہ پاس کرنا پڑا. اگرچہ ملک کی کورٹوں میں ایسے بہت ایگزامپل سامنے آئے کہ کورٹیں اس کے خلاف جو ہے چکانے دیتی ہے، ججمنٹ دیتی ہے، اس کے ایک نہیں دسیوں جو ہے چکانے پورے ملک کے اندر آئے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو لوگ بات اٹھا رہے ہیں کہ عدت پوری ہو جانے کے بعد بھی عورت کو خرچہ ملنا چاہیے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، اب کس بیس پر، کس بنیاد کے اوپر وہ عورت خرچہ مانگنے کی حقدار ہے؟ کون سی بنیاد، کون سا بیس؟ جب نکاح نہیں رہا، نکاح کے بعد عدت بھی ختم ہو گئی، سارے سبن ختم ہو گئے، اب کس بیس کے اوپر اس کو خرچہ دیا جائے؟ کوئی بیس ہو تو ہم کو بتلاوے. پہلا سوال ہمارا یہ ہے، قیامت کی صبح تک کوئی جواب نہیں دے سکتا. دوسری بات، ہمارے دین کے اندر جو ہے نا، شادی کرنے کے بعد بھی عورت کا رشتہ اپنے ماں باپ کے خاندان سے باقی رہتا ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ شادی کے وقت سب دے دیا تھا، اب وارثے میں بھی کوئی حصہ نہیں. ابھی مفتی ہوئے صاحب آپ کو میراث کے مسئلے سنا رہے تھے، سن لو، شادی کے اندر کروڑ روپیے کا باپ نے دیا، پھر بھی لڑکی کا حصہ باپ کے مال میں باقی رہے گا، اس کے اندر جو ہے کوئی حق ختم نہیں ہوگا، یہ باقی رہے گا آئندہ بھی. چنانچہ ایک عورت کو عدت کے بعد باپ کے مال میں سے بھی میراث مل سکتی ہے، ماں کے مال سے بھی میراث مل سکتی ہے، بعض مرتبہ بھائی کے حصے میں سے بھی میراث مل سکتی ہے، بہن کے حصے سے بھی میراث ملتی ہے. اور یہ کہا گیا کہ بالفرض اگر یہ عورت کا انتقال ہو جاتا اور جن جن لوگوں کو میراث میں حصہ مل سکتا تھا، تو میراث کے حصے کے بقدر نفقے کے ذمہ دار ورثہ بھی ہوں گے، اور پرورش کا خرچہ بھی اس کو مل سکتا ہے. اگر شوہر کا لڑکا ہے اور لڑکے کو 7 سال کی عمر تک یہ پرورش کرنے کی حقدار ہے، اور لڑکی کو بالغ ہونے تک یہ متعلقہ عورت پرورش کی حقدار ہے، تو اس کا خرچہ بھی اس کو مل سکتا ہے. عدت میں تو ملے گا ہی ملے گا، اور اگر وہ حمل والی ہے، پریگننٹ ہے، تو حمل کے اندر سے بچہ ہوئے وہاں تک خرچے کی وہ حقدار ہے. مہر باقی تھا تو مہر وصول کرنے کی حقدار ہے. اور جو مال شوہر نے دیا نکاح والی زندگی میں، اس کو واپس نہ مانگے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جو دیا وہ اسی کے پاس رہے. اتنا سارا مال عورت کے پاس جمع ہو جائے، اب بتاؤ کہ اس کو آگے چل کر خرچے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا الْأَيَّامَ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، کہ جو بے شادی شدہ، جن کی شادی نہیں، ان کو جلدی جلدی شادی کراؤ. سرکار جو ہے نا ایک سوتر لکھتی ہے، ابھڑنے بھڑاؤ، تو میں کہتا نیچے لکھو کنوارا نے پڑھنا، ابھڑنے بھڑاؤ اس سے امپورٹنٹ ہے کنواراؤں نے پڑھنا. جن کی بھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہونے کے بعد ختم ہو گئی، تو ان کی شادیاں کراؤ. یہ عورت طلاق کے بعد، عدت کے بعد گھر میں بیٹھی کیوں رہے؟ جاؤ جلدی سے شادی کرو. نبی کے زمانے کے اندر عورتیں بیوہ ہوتی تھی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ایک عورت بیوہ ہوتی، فٹافٹ دوسرے نکاح کر لیتی. بیواؤں کو گھروں کے اندر بٹھایا نہیں جاتا تھا، فوراً جو ہے شادیاں کروائی جاتی تھی. اور دیکھیے، اگر شوہر کے ذمے میں خرچہ ضروری قرار دیا تو بیچارہ شوہر کیا کرے؟ طلاق بیوی کو دینے کے بعد اس نے دوسرا نکاح کیا، تو جو نئی بیوی آئی اس کا بھی خرچہ، نے جو طلاق لے کے عدت پوری کے کر کے چلی گئی اس کا بھی خرچہ، تو وہ مرد زندہ رہے گا کہ برباد ہو کے مر جائے گا؟ ایک جو گھر میں اس کا بھی خرچہ، اور جو عدت پوری کر چکی اس کا بھی خرچہ، तो ये बेचारा ये मेंगवारी के जमाने के अंदर लाएगा कहाँ से इतना सारा खर्चा। और दूसरी बात ये कि इद्दत भी खत्म होने के बाद उस पर जरूरी होए कि नहीं शोहर को खर्चा देना ही देना देना ही देना, तो उस शोहर के दिल में औरत के लिए नफरत पैदा होगी और वो कभी न कभी उस औरत को अल्लाह न करे मारने या मरवाने के पीछे पड़ जाएगा कि ये मैं ये औरत मेरे निकाह में नहीं, निकाह से निकल गई फिर भी उसको खर्चा देने का, इद्दत भी खत्म हो गई फिर भी खर्चा देने का। है आज दुनिया में ऐसे मर्द जो बेचारे तंग आकर के नऊज़ुबिल्ला मारने तक की कोशिश करते हैं, तो ये तो नफरत बढ़ाने वाली चीज है। और इस्लाम ने जो ये बात फरमा दी बस उसके ऊपर हमारा ईमान है कि जब तक इद्दत होगी वहां तक औरत को खर्च मिलेगा, उसके आगे इद्दत के बाद कोई खर्चा नहीं मिल सकता। और जो बात हमें हमारी दीनी बहनों को कहनी है वो इंशाल्लाह उनको भी कहेंगे कि अगर कोई कोर्ट तुम्हारी फेवर में फैसला कर देवे कि इद्दत के बाद भी खर्चा तुमको लेने का, तो सुन लो दुनिया की कोई कोर्ट उनकी फेवर में फैसला करे उसकी वजह से वो खर्चा लेना उसके लिए हलाल नहीं हो जाता, हराम ही रहेगा। दुनिया की अदालत के फैसला करने से शरीयत का कोई हुक्म हराम से हलाल नहीं हो जाता, उसके लिए वो खर्चा लेना हराम ही रहेगा और वो उसको खा पी नहीं सकती। ये साफ साफ हिदायत शरीयत की है। इसीलिए मेरे दीनी भाइयों हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भाई ये तलाक के बाद का खर्चा, इद्दत के बाद का खर्चा ये कब पेश आएगा? जब मुसलमान भेजा तलाक को इस्तेमाल करे तब तो पेश आएगा। अगर हम नियत कर ले कि भाई जिंदगी की गाड़ी जैसी वैसी भी चला लेनी है, बैलगाड़े में अगर एकाध डूबा बैल भी आ जावे ना तो उसको चला लेने का। ये दुनिया की जिंदगी है कितनी, 60-70-80 साल की। यही बीवी जो आज पसंद नहीं है आखिरत में होरों की सरदार बन जाएगी। इसीलिए चला लेने का, तलाक की बात नहीं करने की। एक नारा गांव गांव गली गली महल्ला महल्ला घर घर आम करो, वो नारा मैं आपको दिलवाता हूं। कहो पहली तलाक अभी नहीं, बोलो पहली तलाक अभी नहीं और पहली के बाद कभी नहीं, पहली तलाक अभी नहीं और पहली के बाद कभी नहीं। अगर इसके ऊपर हम आ जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये सब सारे चक्कर भी बाकी नहीं रहेंगे। अल्लाह हमें हमारी शरीयत पर यकीन अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अगला मामला है निकाह।